ओम शांति। दूसरा महायुद्ध था और एक सैनिक, एक सैनिक टुकड़ी के साथ लड़ रहा था। उसके सारे साथी मारे जा चुके थे और वो अकेला कैसे तैसे बच गया और दुश्मनों से भाग निकला। परंतु जो शत्रु थे उनको पता था वो यहां से गया और बहुत सारे सैनिक उसका पीछा कर रहे थे और वो अकेला घायल सैनिक भाग रहा था। ईश्वर भक्त था हृदय में, तेजी से भागते गया, तेजी से भागते गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। भगवान को याद कर रहा है, प्रभु मेरी रक्षा करो। वो भाग रहा है और बहुत सारे कमांडोज उसके पीछे। भागते भागते एक घर के पास पहुंचता है जो कि खंडर जैसा है। मालूम होता है वहां कोई रहता नहीं। उस घर के अंदर घुस जाता है, उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, बहुत पुराने पुराने, और एक कमरे के अंदर घुस जाता है वो, जिसे दरवाजा नहीं है। अंदर जाके छुप जाता है कमरे में और वहां प्रार्थना करने लगता है, प्रभु मेरी रक्षा कर। और उसे पता है किसी भी समय वो सारे सैनिक आ जाएंगे और मुझे तुरंत मार देंगे। और जब इस तरह प्रार्थना कर रहा होता है तो पाता है एक मकड़ी उस दरवाजे के पास आ गई। वो भगवान से कहता है, मैंने तुझे मदद के लिए कहा था, तुमने मकड़ी को भेज दिया, ये क्या करेगी? और वो मकड़ी एक जाल बुनना चालू कर दिया दरवाजे के ऊपर, दरवाजा उसमें बीच में वो जाल बुन देती है। और वो अंदर से भयभीत है, घबराया हुआ है, प्रार्थना कर रहा है किसी भी समय सैनिक आ जाएंगे। और थोड़े ही समय सैनिकों की आवाज सुनाई देती है, घेरो, पकड़ो, मारो, इधर जाओ, उधर जाओ, ठप ठप ठप, बंदूकों की आवाज, कोई इधर घुस रहा है, कोई उधर घुस रहा है, आवाज उसको सुनाई दे रही है, तुम इस कमरे में जाओ, तुम उस कमरे में जाओ। अब किसी भी समय उस कमरे में वो आ सकते हैं। दो सिपाही, दो सैनिक उस कमरे के बाहर आते हैं और देखते हैं एक मकड़ी का जाल है, अर्थात अंदर कोई शायद गया ही नहीं। अगर गया होता तो वो जाल तोड़ दिया होता। तो वो दो सैनिक सोचते हैं शायद यह नहीं है और उस कमरे को छोड़ देते हैं और दो सैनिक चले जाते हैं। और जब सारे सैनिक चले जाते हैं, वो व्यक्ति अपने घुटनों के बल गिरता है और भगवान से धन्यवाद कहता है, मैंने तो सोचा था तुम मेरी मदद कैसे करोगे, पर ये सोचा भी नहीं था, सोच भी नहीं सकता था कि इस मकड़ी के द्वारा तुम मेरी मदद करोगे। तो जब जब आत्मा ने परमात्मा को पुकारा है वो आया है। दिल से कहो मेरा बाबा तो बाप हुजूर हाजिर है, परंतु वो दिल से निकलना चाहिए। ये मुख का सौदा नहीं, ये दिल का सौदा है। केवल कहने से नहीं आएगा वो, केवल पुकारने से नहीं, वो पुकार भी हो तो आर तो पुकार। जैसे भागवत में दिखाया है और मुरलियों में वर्णन आता है, गज और ग्राह, वो हाथी, त्रिकूट पर्वत, उसके पास वो झील, अपने परिवार के साथ जाता है और उस हाथी को एक मगरमच्छ पकड़ लेता है, एक ग्राह। हाथी पुकारता है पत्नी को, बच्चों को, कोई मदद नहीं करता, सब चले जाते हैं और अंततः नारायण को पुकारता है। आर्त पुकार, और दिखाया है भगवान आए, अपना चक्र निकाला और उस ग्राह को मार दिया। जब ऐसी पुकार होगी, जब दिल से पुकारा जाएगा और दिल से आवाज दी जाएगी भगवान को, तब वो आएगा। हम रोज पुकारते, वो आता क्यों नहीं? शायद झूठी पुकार है, मतलब वाली पुकार है, ऊपर ऊपर की पुकार है। बाइबल में एक जगह लिखा है, जीसस क्राइस्ट कहता है, नॉट एवरी वन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। हर एक नहीं जो आकर केवल कहे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, परंतु जो मेरे पिता की मत पर चलेगा, ही शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग के राज्य में वो आ सकेगा। हर एक नहीं जो दिल से कहेगा और उसकी मानेगा और उसके कहने पर चलेगा, वही। तो जब हम उस परम पिया के साथ हैं, जब परमात्मा को हमने अपने जीवन का साथी बना लिया है, तो क्या क्या हो जाता है, उसकी हम चर्चा करेंगे आज। जब भगवान मेरा साथी है तो जब हम उसके साथ हैं तो जो उसके साथ है, सबसे पहली बात, उसके साथ परमात्म ज्ञान भी है। जो परमात्मा से प्रेम करता है, उसके साथ परमात्म ज्ञान चलेगा, उसको परमात्म ज्ञान से प्रेम होगा। कोई कहे कि हमको बाबा से बहुत प्यार है परंतु मुरली से इतना नहीं, अर्थात बाबा से प्यार नहीं। बाबा से प्यार की क्या परिभाषा है? बाप से प्यार अर्थात सात चीजों से प्यार, खाली कोई कहे हम छाती चीर के दिखा दे अंदर बाबा है, पर मुरली के लिए कुछ मत कहना हमको, ये हमको बड़ा बोरिंग, वही 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 बाप आए हैं पतित से पावन बनाने, तुम्हें घर ले जाने, तुम्हें दिव्य गुण धारण करना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तुम्हें सबको संदेश देना है, अब नष्टो मोहा हो जाओ, तुम्हें अब घर जाना है, मुरली मिस नहीं करनी है, सेवाएं भी बहुत करनी है, आसुरी अवगुण तुम में नहीं होने चाहिए, विनाश सामने खड़ा है, मौत का बाजार गर्म होगा, घर को याद करो, राजधानी को याद करो, बाप आए हैं पतित से पावन बनाने, चलो मेरे साथ। इतना सुना कि सुन के काम करना ही बंद कर दिया है। सबसे पहली परिभाषा, बाप से प्यार अर्थात उसके ज्ञान से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसकी मुरली से प्यार, उसके वाक्य से प्यार, उसके वचनों से प्यार, उसके शब्दों से प्यार, उसकी भाषा से प्यार, उसकी भाषा शैली से प्यार। एक है बाप से प्यार करना, एक है मुरली से प्यार करना, एक है बाप से प्यार करना, एक है उसके ज्ञान से प्यार करना। किसी एक मुरली में बाबा ने कहा, बाप के ज्ञान को प्यार करने में बाप से प्यार करने से ज्यादा फायदा है, ऐसा भी कहा है। ये पहली परिभाषा, मुरली से प्यार। दूसरा, बाप से प्यार अर्थात उसके परिवार से प्यार। हम गए बाबा हमारा आपसे बहुत प्यार है, पर ये परिवार तो खतरनाक है, पता नहीं ये ब्राह्मण क्या क्या करते, इससे अच्छे तो बाहर के, ऐसा भी बोलते हैं। और भक्ति मार्ग में है, बाबा हमने ये कहा था कि तुम आना, ये थोड़ी कहा था परिवार को साथ में लेके आना, ये परिवार कहां से आ गया। हमने भक्ति मार्ग में कभी मंदिरों में कहा था कि प्रभु तुम आना, प्रभु तुम आना, साथ में परिवार भी साथ में लाना, ये तुमने क्या कर दिया। प्रभु परिवार क्या है ये, प्रभु परिवार। कोई माता कोई पड़ोस की स्त्री उसके घर में जाती है और कहती है तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, पर तुम्हारा ये जो बेटा है ना एकदम राक्षस है, तो माता क्या कहेगी, अच्छा बहुत अच्छा, आओ मेरे पास रोज आया करो, पसंद आएगा उसको, तुम तो बहुत होशियार हो पर तुम्हारा बेटा तो एकदम बुद्धू है, अच्छा लगेगा उसको। बाबा आप तो बहुत अच्छे हो, आपका ये परिवार, बाप से प्यार अर्थात उसके परिवार से प्यार। ईश्वरीय कुटुंब है, डिवाइन फैमिली है। चुन चुन के भगवान ने आत्माओं को यहां लाया है, एक एक महान आत्मा है। चलो किसमें कुछ भी गुण नहीं है, पर तीन गुण तो हर एक ब्राह्मण आत्मा में है, भगवान को पहचाना, पवित्रता को धारण किया कम ज्यादा, और जीवन को समर्पित किया सूल सूक्ष्म, ये तीन तो हर एक में है, चाहे अनपढ़ माता ही क्यों हो, क्या हो, कोई भी हो, किसी ना किसी रूप से तन मन धन जन भगवान को अर्पण किया है, तो प्रभु परिवार से प्रेम, ये दूसरा। तीसरा, बाप से प्यार अर्थात यज्ञ से प्यार। यज्ञ अर्थात संस्था और यज्ञ में क्या अंतर है, ब्रह्मा कुमारी संस्था, ब्रह्मा कुमारी यज्ञ, ये यज्ञ है। यज्ञ अर्थात ये जो फैला हुआ है, यज्ञ अर्थात जिसकी कोई भौगोलिक व्यवस्था नहीं है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जहां नियम और मर्यादाएं है ईश्वरीय वो यज्ञ है, जिस जिस स्थान पर वो है वो यज्ञ है। हमारी संस्था 4-in-1 है, ये एक दूसरा पॉइंट है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात 4-in-1, पहला यज्ञ, दूसरा परिवार, तीसरा संस्था, और चौथा स्कूल यूनिवर्सिटी, 4-in-1। तो बाप से प्यार अर्थात इस यज्ञ से प्यार, यज्ञ अर्थात यहां की हर चीज, यहां की हर वस्तु, स्थूल और सूक्ष्म, दृश्य और अदृश्य, परोक्ष और अपरोक्ष, वो सब यज्ञ है। जहां ईश्वरीय प्रकंपन है वो यज्ञ है, वो हर स्थान जहां पर परमात्मा वाणी चलाई जाती है यज्ञ है, वो हर मन जहां पर ईश्वरीय प्रेम है यज्ञ है, वो हर आत्मा स्वयं जो ईश्वरीय मत पर चलती है स्वयं यज्ञ है। तो बाप से प्यार अर्थात तीसरा यज्ञ से प्यार, यहां की हर वस्तु से प्यार, इकोनॉमी यज्ञ अर्थात, ऐसा नहीं कि कौन देखता है, लाइट चालू तो चालू, फैन चालू तो चालू, पानी वेस्ट, भोजन वेस्ट, भोजन किस किस ने वेस्ट किया दोपहर में, हाथ खड़ा करना जरा, अभी खाएंगे, कौन कौन करने का संकल्प रख रहे हैं जरा हाथ खड़ा करना, भोजन वेस्ट करने का संकल्प कि हम आज इतना ले लेंगे और छोड़ देंगे, कम से कम थाली में हो, जरूरत पड़ी तो फिर लो, वेस्ट नहीं होना चाहिए, बोझ चढ़ेगा। तो बाप से प्यार अर्थात उसके ज्ञान से प्यार, बाप से प्यार अर्थात परिवार से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके यज्ञ से प्यार, चौथा बाप से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार। बाबा बहुत अच्छा है पर ये मधुबन यहां पर ऐसा ऐसा करते हैं, बाबा से मिलन मनाने जाते हैं और वहां पर जाकर मधुबन निवासियों की गलतियां ढूंढने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं, परचिंतन करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं। क्या यहां से मधुबन में मधुबन निवासियों की निंदा करने गए थे? मधुबन निवासियों की निंदा अर्थात मधुबन की निंदा। जो चुल पर वो दिल पर भगवान ने रखा है उन्हें वहां। तो मधुबन से प्यार। अगला बाप से प्यार अर्थात सेवा केंद्र से प्यार। और कोई कहते हैं मधुबन तो बहुत अच्छा है, यहां सेवा केंद्र में प्रॉब्लम है, तो क्या ये बाप का प्यार है? हर एक यज्ञ निवासी, सेंटर निवासी, ब्राह्मण आत्मा का कर्तव्य है कि ब्राह्मण आत्मा सेवा केंद्र के वायुमंडल को दूषित ना करे, वरन वहां का वातावरण शक्तिशाली बनाए। इसलिए बाप से प्यार अर्थात उस सेवा केंद्र से भी उतना ही प्यार चाहिए। बाइबल में दिखाया है जीसस क्राइस्ट एक मंदिर में घुसता है, सिनेगॉग जिसको कहते हैं, यहूदियों का मंदिर, ज्यूइश टेंपल सिनेगॉग, और देखता है मंदिर के प्रांगण में लोग क्या कर रहे हैं, कोई पक्षी बेच रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो इतना गुस्से में आता है, पहली बार गुस्से में आता है और सब उलट पुलट कर देता है, सारे टेबल को मेज को उठा उठा के पटकता है और कहता है भगो यहां से सब लोग, यू हैव कन्वर्टेड द हाउस ऑफ माई फादर इन टू डेन ऑफ थीव्स, मेरे पिता के घर को तुमने ये क्या बना दिया। और वहां वो एक वाक्य कहता है, द लव फॉर दिस हाउस ऑफ गॉड बर्न्स इन मी लाइक अ फायर, भगवान के घर के लिए मेरे अंदर जो प्यार है वो आग की तरह है। क्या ऐसा प्यार हमारे अंदर है? The love for this house of God burns in me like a fire. आग है मेरे अंदर। ऐसा प्यार इस मधुबन से और इस सेवा केंद्र से। क्या ऐसा प्यार है? क्या सेवा केंद्र को हमने अपना घर समझा है? जितनी देखभाल अपने घर की करते हैं क्या उतनी देखभाल सेवा केंद्र की करते हैं? तो बाप से प्यार अर्थात सेवा केंद्र से प्यार। अगला बाप से प्यार अर्थात उसकी श्रीमत से प्यार। श्रीमत में मर्यादाएं नियम आ जाएंगे, संविधान आ जाएंगे, ईश्वरीय कायदे कानून आ जाएंगे, मुरली में कभी आता है बाप तुम्हें राय देते, कभी कहते हैं बाप का ये सजेशन है, कभी कहते हैं देखो तुम कर सकते हो तो जितना याद करना है करो, पर कभी कभी कहते हैं ये बाप का ऑर्डिनेंस है, आज्ञा है, फरमान। फरमान बहुत ऊंचा शब्द है। यज्ञ के इतिहास में एक बार ऐसा हुआ कि रोज की मुरली में जो वरदान आता है उसकी जगह 3 मास तक फरमान आता था। वरदान को हटा दिया, थोड़ी नवीनता के लिए फरमान, और फरमान अर्थात बहुत कड़क शिक्षाएं उसमें थी। इतने खत आए मधुबन में, इतने खत आए, और राजू भाई जी को बोला गया कि इसको हटाओ, क्योंकि फरमान न पालन करना मतलब सजा, और हम तो भूल जाते हैं दिन भर में। वो 3 मास के बाद हटा दिया, वापस वरदान आ गया। वरदान थोड़ा माइल्ड लाइट है, याद रहा तो याद रहा, नहीं रहा तो नहीं, पर फरमान आता था। तो श्रीमत से प्यार अर्थात मर्यादाएं, नियम, कायदे, कानून, संविधान से प्यार। उसके बाद बाप से प्यार अर्थात उसके घर से प्यार और उसके स्थापन की हुई राजधानी से प्यार, उसके घर से प्यार जहां से वो आया है, और वो भी हमारा भी घर है। निरंतर उस घर की यात्रा, निरंतर उस घर का स्मरण, अब घर जाना है ये याद, और नए युग में आना है वो स्मरण, भविष्य राजधानी का स्मरण। अभी अभी शांतिवन में जो मुरली चली, 31 दिसंबर 2006 की रिकॉर्डेड मुरली नववर्ष की, बाबा ने कहा नववर्ष को देखते हो तो क्या याद आता है, नवयुग याद आता है, नैनों के सामने क्या आता है, नवयुग याद आता है, वो सीन सीनरी सामने आती है, वो प्राप्तियों के भंडार सामने आते हैं, तन मन धन जन सब कुछ श्रेष्ठ सामने आता है। मुरली की शुरुआत ही वहां से है, सुनी सबने ना, अभी अभी जो मुरली चली 31 दिसंबर 2006 की रिकॉर्डेड मुरली, इस नववर्ष को देखते हुए वो युग याद आए, वो युग आंखों के सामने हो। तो बाप से प्यार अर्थात उसके घर से प्यार। न तत् भासयते सूर्य न शशांको न पावक, यद गत्वा निवर्तन्ते तद् धामं परमं मम। हे अर्जुन, मेरा वो जो धाम है, न तद् भासयते सूर्य न शशांक न पावक, वहां न सूर्य है न चंद्रमा है न तारे है, स्वयं प्रकाशित है वो। तद् धामं परमं मम, वो मेरा परम धाम है। परमधाम शब्द गीता में आया है, और भगवान कहते हैं वो मेरा धाम है। तो बाप से प्यार अर्थात उसके घर से प्यार, उसकी राजधानी से प्यार। तो पहला क्या बताया, मुरली। दूसरा परिवार, तीसरा यज्ञ, चौथा मधुबन, पांचवा सेवा केंद्र, छठवा श्रीमत, और सातवा, सातवा भी बताया नहीं, घर और परिवार एक साथ। एक ही है, बाप से प्यार अर्थात उसने जिन निमित्त टीचर्स को यज्ञ में रखा है उन टीचर्स से प्यार। ये सब कौन बहने बैठी है, टीचर्स कौन है, कौन है वो? कौन बैठी है सब सेंटरों पर? किसने बिठाया है? बाबा ने बिठाया, पर किसको बिठाया है? कौन है वो? ज्ञान गंगा है। और कौन है वो? देविया। कौन सी देविया? मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वो वही है, भक्त जिनके आगे नतमस्तक है वो वही देविया है। साधारण आत्माएं या असाधारण आत्माएं? असाधारण। क्यों? क्यों क्यों असाधारण है? भगवान ने चुना है, और क्यों असाधारण है? जिन्होंने अपने जीवन को और जिन्होंने अपने यौवन को और जिन्होंने अपने संपूर्ण अस्तित्व को यज्ञ की इस वेदी पर समर्पित कर दिया, वो निवेदिता है, वो समर्पिता है और वो अर्पिता है। साधारण आत्माएं हो सकती है? वो चाहती थी तो संसार में बहुत कुछ कमा सकती थी, कर सकती थी, पर वो सब कुछ छोड़कर भगवान के यज्ञ में अपने जीवन को स्वाहा कर दिया। क्या वो साधारण हो सकती है? क्या उनकी तुलना किसी और से हो सकती है? संसार की हजार नारियां, लाखों नारियां एक तरफ और एक ब्रह्मा कुमारी एक तरफ। जिसे स्वयं भगवान ने अपने यज्ञ में रखा है, जिसे स्वयं भगवान ने चुना है, ऐसी बाल ब्रह्मचारिणी, अनटच्ड, साधारण नहीं हो सकती। जिसे भगवान भी वंदे मातरम कहता है, वो सभी छोटी छोटी कन्याएं जो यज्ञ में शुरुआत में आई थी, कहां से कहां पहुंचा दिया बाबा ने। इसके लिए जो भी निमित्त आत्माएं हैं उनके प्रति घृणा, नफरत, षड्यंत्र, गुटबाजी, परचिंतन, परदर्शन, किस श्रेणी में आएगा? और सभी भाई और सभी कुमारों के लिए, यदि मंदिर में कोई जाता है किसी देवी के और उस देवी के प्रति उसके मन में कुविचार आते हैं, विकार की भावना आती है, और वो विकार की भावना वहां के मंदिर के पुजारी और लोगों को पता चल जाए तो क्या करेंगे उसके साथ? क्या करेंगे उसके साथ? तो जो सेवा केंद्र पर बहने हैं वो परमात्मा प्रतिनिधि है, और उनके प्रति यदि मन में इस तरह के विचार यदि उठ रहे हैं तो परमात्मा दरबार में विद्रोह होगा वो, और विद्रोह की सजा मृत्यु दंड है। और यदि जो माताएं हैं और कोई ये सोचता है कि इन बहनें को क्या पता, इन्होंने क्या जीवन देखा है, अनुभवी हम हैं, और कोई कुमारी ये सोचती है कि ये इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, हम ज्यादा पढ़ी लिखी है, हमको ज्यादा ज्ञान है, हमारे पास डिग्रियां ज्यादा है, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी हो, तुमको भगवान ने नहीं चुना है। इसके लिए जिन्हें साक्षात डायरेक्ट भगवान ने चुनकर अपने घर में रखा और जिनके द्वारा दूसरी आत्माओं की पालना हो रही है, वो सदैव माननीय, पूजनीय, वंदनीय है। शायद उनको कुछ बातें कम समझ में आती हो, शायद अनुभव ना हो, फिर भी उनके डिसीजन के पीछे, उनके संकल्पों के पीछे परमात्मा संकल्प छिपा है। इसके लिए इस संपूर्ण यज्ञ की जितनी भी बहनें हैं और जिन्होंने अपने आप को होम किया है इस यज्ञ की वेदिका पर, सदैव उनके लिए हमारे मन में श्रेष्ठ भावना हो, उच्च विचार हो, कुदृष्टि, गलत भावनाएं, गलत संकल्प, पाप के संकल्प, घृणा के संकल्प न हो, तब कहेंगे परमात्मा प्रेम। तो हम कहां थे? सबसे पहला पॉइंट चालू था हमारा, जब पिया साथ है तो कौन साथ है? उसका ज्ञान साथ चलता है। जब परमात्मा साथ अर्थात तो उसका परमात्मा ज्ञान साथ चले, या परमात्मा साथ के लिए परमात्मा ज्ञान की आवश्यकता है, दोनों तरीके से। दूसरा, जब बाबा साथ है तब उसकी मदद भी साथ है। मदद का अनुभव नहीं हो रहा है अर्थात हाथ छोड़ दिया है। एक सेवा केंद्र की बहन ने अभी अभी हमसे एक अनुभव शेयर किया और उसने कहा कि यह अनुभव उसको तब हुआ जब वो एक बार विदेश गई थी, सेंटर की समर्पित बहन। और उसने हमसे पूछा कि हम आपसे पूछते हैं कि क्या यह हो सकता है जो हमारे साथ हुआ, क्योंकि उसने कहा यह बात आज तक हमने किसी को नहीं बताई, शायद बताते तो लोग हंसी उड़ाते या बताते तो चमत्कार कहते, इसके लिए हम आपसे पूछ रहे। उसने हमसे पूछा क्या ये बात बतानी चाहिए किसी को। हमने कहा क्या हुआ था, तो उसने कहा कि एक बार वो विदेश गई थी और मौन भट्टी चालू थी और इतनी बाबा की याद में खोई हुई थी और रास्ते से चल रही थी और चलते चलते अचानक दलदल आ गया और दलदल में वो घुस गई घुटनों तक, और वो दलदल ऐसा था कि वो नीचे नीचे घुसती जा रही है, धसती जा रही है। उसमें आसपास उसने पुकारा, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, घुटनों तक चली गई। और फिर एकदम से उसने आंख बंद कर ली और बाबा को ऐसा पुकारने लगी कि जैसा आज तक पुकारा नहीं होगा, बाबा मैंने आपको अपना जीवन दिया है, अब जैसी तेरी इच्छा। उसके कमर तक वो दलदल में घुस गई और घुसती जा रही है, आसपास कोई भी नहीं, बस अब गई खत्म थोड़े ही क्षणों में, कमर के ऊपर तक घुस गई, आंखें बंद कर ली और बस बाबा को याद करने लगी। ऐसा याद किया कि कभी याद नहीं किया। और कुछ पलों के बाद जब उसने आंख खोली तो वो दलदल से बाहर थी और आसपास देखा कोई भी नहीं था। तो उसने हमसे पूछा, ये बात हुए बहुत साल हो गए पर हमने आज तक किसी को बताया नहीं। फिर वो वहां से निकली और उसकी साड़ी पूरी कीचड़ से, और वहां नल था और उसको उसने साफ किया। तो उसने कहा ये क्या है, क्या कहेंगे? ऐसा भी हो सकता है, जिसको वो बचाना चाहे। जाके राखे साइया, मार सके न कोई उसकी मदद। तो जहां परमात्मा साथ है उसका ज्ञान साथ है, और जहां परमात्मा साथ है उसकी मदद साथ है। कहीं ना कहीं से मदद आ जाएगी, किसी ना किसी कोने से, छुपके से, केवल सच्चाई अंदर हो। मदद करेगा भगवान, सब रास्ते बंद हो गए, मदद करेगा, कुछ तो ऐसा होगा कि अनुभव होगा कि यह डायरेक्ट मदद हुई है, किसी मनुष्य के बस की बात ही नहीं थी, डायरेक्ट ऊपर से आई है मदद। और ऐसे बहुत सारे माताओं के और भाइयों के ढेर सारे अनुभव, एक ही नहीं, ये तो एक बताया, पर यहां आप लोग ही कितने सारे होंगे, हरेक के अगर अनुभव सुनो तो भागवत हो जाए एक, इतने मदद के अनुभव है। हमको अपने ही जीवन का याद है कि जब हम शुरू शुरू में मधुबन में थे, हमारा नियम था 1:30 बजे उठना और 2 बजे मधुबन पहुंचना। और एक बार ट्रेन से हम कहीं जा रहे थे और हम सो गए 10 बजे ट्रेन में, और जब आंख खुली तो देखा एकदम उजाला, एकदम प्रकाश खिड़की के बाहर ट्रेन से, और एकदम हमको दुख हुआ कि हमारा अमृत वेला मिस, एकदम हम उदास हो गए और बाबा से बात करने लगे कि ऐसे कैसे हो गया, कुछ तो किया होता तुमने जगाने के लिए। और थोड़ी देर में ट्रेन चालू हुई, वो रुकी थी एक जगह, वो स्टेशन था एक्चुअली, ट्रेन आगे बढ़ी, अंधेरा आ रहा, घड़ी में देखा 2 बज रहे थे। मधुबन के एक भाई ने ऐसा ही अनुभव कुछ समय पहले सुनाया था, वो भी ऐसा एक गड्ढे में या कुछ खेत में था, पहले गांव में रहता था बेचारा, और वो गिर गया, बस अब नीचे जा ही रहा है, भंवर जैसा कुछ था, तो अचानक एक व्यक्ति आया, उसको खींचा बाहर निकाला, और जब बाहर निकाला वो था, और वो जो अपने आप को ठीक करने लगा, बाजू में देखा तो गायब, कहां चला गया पता नहीं, आया मदद कर दिया और चल गया। भरते हुए किसी ने ना देखा पर झोली भर जाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। तो जहां परमात्मा साथ होगा वहां पर उसकी मदद होगी, दूसरा, तीसरा, परमात्मा छत्र छाया होगी। कहते हैं जब मोहम्मद पैगंबर चलते थे रेगिस्तान में उस अरब की, तो उसके ऊपर ऊपर बादल चलते थे उसको छाया देने के लिए, जहां जहां मोहम्मद पैगंबर जाते थे उस धूप में ऊपर ऊपर बादल जैसे छत्र छाया। ऐसा ही एक अनुभव हिसार के रमेश बहन जी है, उन्होंने सुनाया था, बड़े बड़ी बहन है, सीनियर बहन जी, अभी भी है, लिखा हुआ भी है मैगजीन्स में, कि जब वो युवा थे और नई नई सेवाएं चालू हुई थी उधर, तब एक बार गीता पाठशाला गए, रात हो गई, 11 बज गया, आने को कोई साधन नहीं, और उधर से एक ट्रक आ रहा था, तो उन्होंने ट्रक को रोका और ट्रक में बैठे, उन्होंने कहा मुझे हिसार तक जाना है, ट्रक में बैठे, और ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था, और चलाते चलाते उसकी दृष्टि वृत्ति खराब हो गई, और उसने गाड़ी कहीं और दिशा में मोड़ दी ट्रक, और चालू, बहन को पता चल गया कि ये रास्ता तो जाता ही नहीं है एकदम से, और वो अकेली है, और ट्रक तेज स्पीड से है, रात को 11:30 बजे जा रहा है। चिल्लाने का कोई मार्ग नहीं, रास्ता सुनसान अंधियारा, ऐसा बाबा को याद किया उस ट्रक में बैठे बैठे, और एक शिव शक्ति रूप धारण किया कि मैं कौन, मैं शिव शक्ति हूं, वहां बैठे बैठे और पता नहीं उस ड्राइवर को क्या हो गया, अचानक से टच हुआ कि मेरे सामने साक्षात दुर्गा बैठी है बाजू में। वो तो लेके जा रहा था कहीं, और एकदम से चलाते चलाते उसको धक्का लगा कि मेरे बाजू में जो बैठी है साक्षात दुर्गा है, और उसने एकदम से गाड़ी रोक दी और कहने लगा कि आप तो मुझे देवी जैसे दिखती हो, आप मां हो। और उसने स्वीकार किया कि मेरी भावनाएं दूषित हो गई थी, मुझे माफ कर दो, और माफी मांगी और बहन को वापस सेंटर तक छोड़ दिया रात को 12 बजे। ये किसकी मदद थी? पर मिलेगी किनको? जो सच्चे हैं, जिनके हृदय में छल कपट नहीं, झूठ नहीं, मिथ्याचार नहीं, स्वच्छ हृदय है जिनका, भगवान उनकी मदद करेगा। तो जहां बाप का साथ है वहां उसकी छत्र छाया है। अगला, जहां बाप का साथ है, पिया का साथ है, वहां परमात्मा दुआए है। ले लो दुआए मां बाप की, जिसके ऊपर परमात्मा दुआ हो, जिसको मिल जाए उसको और क्या चाहिए? भगवान ही जिसको मिल जाए उसको क्या चाहिए? एक राजा ने सुबह सुबह अपने महल में घोषणा कर दी कि आज सारे दिन भर जिसको जो चाहिए उसका हुआ, पूरा राज्य जो है मेरा, घोड़े, हाथी, हथियार, तिजोरी, खजाना, आओ और जो जिसको हाथ लगाएगा वो वस्तु उसकी। सुबह से भीड़ मच गई, कोई घोड़े को हाथ लगा रहा है, कोई हाथी को हाथ लगा रहा है, कोई किसको हाथ लगा रहा है, कोई किसको हाथ लगा रहा है। और एक छोटी सी लड़की वहां खड़ी रहती है, वो सब देख रही है ऐसे ऐसे करके, सब लोग भाग रहे, इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहे है। तो राजा पूछता है उस लड़की को, तुमको क्या चाहिए? तो वो लड़की भाग के आती है, राजा को हाथ लगा देती है। अब सब कुछ उसका हो गया, जो राजा को ही पकड़ ले, जो भगवान को ही पकड़ ले तो भगवान का सब कुछ उसका हुआ। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto it. Jesus Christ अपने शिष्यों से कहता है पहले ईश्वर को प्राप्त करो, फिर ये संसार की सारी वस्तुएं ऐड होती जाएगी। All these things, संसार का नाम, मान, सम्मान अपने आप ऐड होगा। But first, seek ye first the kingdom of God. तो जब भगवान हमारे साथ है तो उसकी छत्र छाया, उसकी दुआएं हमारे साथ साथ चलती है, और कितनी भी बड़ी मुश्किल हो जाए वो दुआएं हमको वापस खींच कर निकालेगी कठिन से कठिन परिस्थिति से। उसके बाद जहां परमात्मा साथ है वहां सर्व परमात्मा प्राप्तियां है, सब मिल जाएगा, प्राप्तियां। जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। इस यज्ञ का एक नियम है, मनोवांछित फल प्राप्त कराने वाला ये यज्ञ है, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। कोई सोचता है मुझे धन चाहिए, उसको धन भी मिल जाएगा यहां पर। कोई सोचता है मुझे नाम मान शान चाहिए, वो भी मिल जाएगा यहां पर। जो से वांछी लतोते लाहो प्राणी जात, सब मिलेगा यहां पर उसको। ये यज्ञ का नियम है, जो जिसको चाहिए वो मिल जाएगा। तो परमात्मा प्राप्तिया, उसके बाद परमात्मा अनुभव। जब बाबा साथ है तब क्या होगा? परमात्मा अनुभूतियां होगी, ऐसी ऐसी दिव्य अनुभूतियां होगी कि जो हमने कभी सोची नहीं थी। इतनी सूक्ष्म अनुभूतियां होगी कि उसका कोई वर्णन नहीं है। और वो ऐसा खुशी, ऐसी खुशी होगी वो। एक गीत बहुत अच्छा है और हमको बहुत अच्छा लगता है वो, हमको गाना नहीं आता पर गाएंगे, आप हमारे पीछे गाना। तब तक भाई वो गीत आप ढूंढ के रखो। हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। बाबा ये कितने प्यारे नजारे, तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका, वो ताज फीका, वो तत्व फीका, गर आज हमारे बस जो चले तो हम रोक लेंगे, दिन ये सुहाने। बहुत सुंदर गीत किसी माता का गाया हुआ, मूर्ति माता एक थी यज्ञ में, उसने ये गीत गाया है जिसमें बहुत प्यार छिपा हुआ है। तो जब बाबा साथ है तो सर्व ईश्वरीय अनुभव होने लगते हैं। ये सुनाया नहीं जाता, आंखों से बरस जाता है ऐसा ईश्वरीय अनुभव, ईश्वरीय प्रेम। अगला, जब ईश्वर परमात्मा साथ है तो परमात्मा दृष्टि सदैव हम पर है। एक अव्यक्त संदेश था जिसमें इतना सुंदर शब्द था कि बाप की दृष्टि की छत्र छाया के अंदर, गुलजार दादी के लिए बच्ची चल रही है, बाप के दृष्टि की छत्र छाया में बच्ची चल रही है। तो जब ईश्वरीय साथ हमारे पास है तो उसकी दृष्टि निरंतर हम पर है, वो देख रहा है हम क्या कर रहे हैं, और यदि हम कुछ गलत करें तो सावधानी देगा, तुरंत हमको पता चलेगा कि ये मैं गलत कर रहा हूं, ये मुझे नहीं करना चाहिए। एक आवाज अंदर से आएगी, डिवाइन कॉल, डिवाइन वॉइस आएगी, स्टॉप, ये तुम नहीं कर सकते। कोई तो रोकेगा, और बाद में हम सोचेंगे तो पता चलेगा अगर मैंने कर दिया होता तो कितना बड़ा पाप हो गया होता। तो जब पिया साथ है तो इतनी सारी बातें होगी। ओम शांति।